कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। जय वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनाचारी। यमुना तीरा वनाचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजनाय यमुना तीरा वनाचारी। यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय होम विष्णुपाद परमहंस परिवजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमत हिस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की। मथुरा द्वारका धाम की। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। भागवत धर्म की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैस्तिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद पांचवा श्लोक नंबर पांच अध्याय बारह शीर्षक महाराज रघुगण तथा जड़ भरत की वार्ता। श्लोक नंबर पांच और छह, पांच सिर्फ लिखा हुआ है यहां पे। हरे कृष्ण। ब्राह्मण उवाच अयम् जनः नाम चलन् पृथ्वीव्यां यः पार्थिवः पार्थिव कस्य हेतो तस्यापि च अंग्यो अधि गुल्फः जंगः जानु उरु मध्यो शिरधर हंसः हंसे दैट इज द नेक्स्ट वर्स। ब्राह्मण उवाच अयम् जनो नाम चलन् पृथ्वीव्यां या पार्थिवा पार्थिव कस्य हेतो तस्यापि चाङ्ग्र्योरधिगुल्पजङ्गा जानुरुमध्योरशिरोदारांश ब्राह्मण उवाच अयम् जनो नाम चलन् पृथ्वीव्यां या पार्थिव पार्थिव कस्य हेतो तस्यापि चाङ्ग्र्योरधिगुल्पजाङ्गा चानूरुमध्योरशिरोदारांश ब्राह्मण उवाच अयम् जनो नाम चलन् पृथिव्यां या पार्थिव पार्थिव कस्य हेतो तस्यापि चाङ्ग्र्योरधिगुल्पजाङ्गा जानुरुमध्योरशिरोदारांश Yes, anyone wants to chant? ராமன உவாச்ச. வைஷ்ணவீஸ் ப்ராஹ்மண உவாச்ச, அயம் ஜனோ நாம சலன் ப்ருதீவ்யாம் யா பார்த்திவ பார்த்திவ கஸ்ய ஹேதோ தஸ்யாபி சாங்க்ரியோ ரதி குல்பஜாங்கா ஜானூரு மத்யோ ரசிரோதாரம்ஷா. தூசரா ஜோ ஸ்லோக் ஹே உஸ்கா மே சிர்ஃப் உச்சார் கர்த்தா ஹூம், ஃபிர் உஸ்கே பாத் ஹம் அனுவாத் படேங்கே. ஹம் சேதி தார்வீ சிவிகா சயஸ்யம் சௌவீர ராஜேத்ய அபதேஷாஸ்தே யஸ்மின் பவன் ரூட நிஜாபிமானோ ராஜஸ்மி சிந்துஷ்வ இதி துர்மதாண்டா. பிராமண உவாச்ச, பிராமண் நே கஹா, அயம் யஹ ஜனஹ புருஷஹ நாம பதவி சலன் சல்தே ஹுவே பிருத்திவ்யாம் பிருத்வி பர் யஹ ஜோ பார்த்திவ பிருத்வி கா ரூப் பார்த்திவ் ஹே ராஜா ஜிஸ்கா ஷரீர் பார்த்திவ் ஹே கஸ்ய கிஸ் ஹேதோ காரண் தஸ்ய அபி உஸ்கா ச ததா அங்கயோ பாவ் அதி ஊபர் குல்ப் டக்னே ஜங்கா பிண்டலி ஜானு குட்னே குரு ஜகன் ஜாங் மத்யோர் கட்டிகமர் சிரதர கர்தன் ஹம்சா கந்தே. அனுவாத் ஔர் தாத்பரிய ஸ்ரீல பிரபுபாத் துவாரா. ஸ்வரூப் சித்த பிராமண் ஜட பரத் நே கஹா, அநேக பௌத்திக சன்யோகோ மே விவித ரூப் ததா பார்த்திவ் ரூபாந்தர் வித்யமான் ஹே. குச்ச காரணவஷ் சே பிருத்வி பர் ஹில்தே டுல்தே ஹே ஔர் பால்கி வாஹக் கஹலாதே ஹே. இன்மே சே வே பௌத்திக ரூபாந்தர் ஜோ கதி நஹி கர்தே, வே பத்தர் ஜேசே ஸ்தூல் பௌத்திக பதார்த் ஹே. பிரத்யேக தஷா மே யே பௌத்திக தேய பாவ் டக்னா பிண்டலி குட்னா ஜாங் கமர் கர்தன் ததா சிர் கே ரூப் மே மிட்டி ததா பத்தர் சே பனி ஹே. இஸ்கே கந்தோ கே ஊபர் காஸ்ட் கி பால்கி ரகி ஹே ஔர் உஸ்கே அந்தர் சௌவீர் கா ததா கதீத் ராஜா பேட்டா ஹே. ராஜா கா ஷரீர் மிட்டி கா அன்ய ரூபாந்தர் மாத்ர ஹே, கிந்து உஸ் ஷரீர் கே அந்தர் ஆப் ஸ்தித் ஹே ஔர் அஹங்கார் வஷ் அப்னே ஆப் கோ சௌவீர் ராஜா கா ராஜா மான் ரஹே ஹேன். தாத்பரிய நே பிரபுபாத் பதா ரஹே ஹே, பால்கி வாஹக் ததா பால்கி கே யாத்ரி கே ஷரீரோ கா விஷ்லேஷன் கர்த்தே ஹுவே ஜட பரத் இஸ் நிஷ்கர்ஷ் பர் பஹுஞ்சதே ஹே கி வாஸ்தவிக பிராண சக்தி தோ ஜீவாத்மா ஹே. ஜீவாத்மா பகவான் ஸ்ரீ விஷ்ணு கா ஹி அம்ச ரூப் ஹே. அத இஸ் பௌத்திக ஜகத் மே समस्त चर तथा अचर वस्तुओं में मुख्य तत्व को भगवान श्री विष्णु है। उनकी उपस्थिति के कारण ही प्रत्येक वस्तु कार्यशील है और क्रिया तथा प्रतिक्रिया होते हैं। जो यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल कारण भगवान श्री विष्णु है, उसे तत्वज्ञानी समझना चाहिए। यद्यपि राजा रहुगुण को राजा होने का अहंकार था, किंतु वह वास्तव में ज्ञान में स्थित नहीं था, इसीलिए वह कारों को डांट रहा था जिनमें स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण जड़भरत भी थे। जड़भरत द्वारा राजा पर यह पहला आरोप था, जो प्रत्येक वस्तु को पदार्थ मानकर अविद्या के कारण आत्मसिद्ध ब्राह्मण से बोलने का दुशासन कर रहा था। राजा रहुगुण का तर्क था कि जीवात्मा तो शरीर के अंदर है, अतः जब शरीर थकता है तो उसके अंदर की जीवात्मा अवश्य कष्ट भोगती होगी। लेकिन अगले श्लोकों में यहाँ भली भांति समझाया गया है कि शरीर की थकान से जीवात्मा को कष्ट नहीं होता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती आभूषणों से लदे एक बालक का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि ये बालक का शरीर अत्यंत सुकुमार होता है, किंतु न तो उसे थकान या अनुभव होता है और न उसके अभिभावक ही आभूषणों को उतारने के लिए व्यग्र होते हैं। जीवात्मा को शारीरिक सुख दुख से कुछ भी लेना देना नहीं होता, ये तो मानसिक तर्क मात्र है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह हर वस्तु का मूल कारण ढूंढ निकालेगा। लौकिक व्यवहार में भौतिक संयोगों तथा परिवर्तन क्रम को तथ्य कहा जा सकता है, किंतु जीवन शक्ति आत्मा को इनसे कोई सरोकार नहीं होता। जो भौतिक दृष्टि से असंतुलित है वे शरीर की चिंता करते हैं और दरिद्र नारायण की सृष्टि करते हैं, किंतु यह सच नहीं है कि शरीर के दरिद्र होने से आत्मा या परमात्मा भी दरिद्र हो जाते हैं। ऐसा तो अज्ञानी ही कहता है। आत्म तथा परमात्मा शारीरिक सुख दुख से सर्वथा पृथक होता है। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानांजनाशलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। சப்தகாஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்த ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமோ ஹரே ராமோ ராம ராமோ ஹரே ஹரே. तो सभी का आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कथा में स्वागत है. तो आज का विषय वैसे देखा जाए तो बहुत ही सामान्य है. बहुत बार सुना है हमने कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है. हाँ, लेकिन विषय साधारण लग रहा है क्योंकि बार बार सुनते तो ऐसा लगता है तो मैंने सुना है. लेकिन ज्ञान और विज्ञान में बहुत अंतर होता है. एक है ज्ञान और एक है विज्ञान. सो ये जो संदर्भ है, एक संवाद है ज्ञानी व्यक्ति और विज्ञानी व्यक्ति का, अंतर क्या होता है. हाँ, तो कई ऐसे विषय हमें पढ़ने में लगता है इसमें क्या बार बार वही बताया जा रहा है. वैसे शास्त्र में बताया गया है कि ये जो हमारी श्रुति होती है, श्रुति, वो सिर्फ हम सुनते हैं, लेकिन उसको आसान करने के लिए वही विषय को स्मृति भी है. अभी कैसे समझे हम, जैसे श्रुति है, उपनिषद है, ये बताया जाता है कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, हमने सुन लिया. लेकिन उसका थोड़ा सा और विवरण करने के लिए ऐसे कोई कथा या ऐसा कोई संदर्भ, ऐसे उसको बाहर लाया जाता है. और वैसे है आज का ये बहुत ही रोमांचक है कथा. कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे जो भागवत कथा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो भाग है भागवतम का, इसको कहते हैं अमृतोत्सव. अरे इसमें अमृत का है, ज़्यादा करके अमृतोत्सव बोलते हैं तो लोगों को याद आता है अमृत मंथन. लेकिन भागवत का ये जो भाग है उसको कहा कि ये अमृतोत्सव है. अभी किस तरह का उत्सव होने वाला है, अमृत का क्या ज्ञान है, तो इसके लिए थोड़ा सा समझना भी थोड़ा जरूरी है. आज के संदर्भ में हमने देखा है कि रहुगुण राजा, उसको समझ में आया है कि मेरे से गलती हुई है, हमारे से गलती हुई है. ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ा कृपा होना चाहिए. भगवान का अगर कृपा होगा तो ही हमें समझ में आ गया, अरे मेरे से गलती हो गई. लेकिन ज्यादातर मिथ्या अहंकार के प्रभाव में होता है, गलती हुआ है लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं. अगर मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर उसका सोल्यूशन क्या है. तो यहां ऐसे अब ये 12वां अध्याय है, 11वां अध्याय में ये शुरुआत हुआ संवाद. तो कुछ हद तक जड़बरत, जिनको यहाँ पे ब्राह्मण बोल के उच्चार किया कि ब्राह्मण करते हैं जो आत्म साक्षात्कार हुआ है, तो उन्होंने कुछ हद तक शुरुआत थोड़ा दिया, थोड़ा डांट के ही दिया. लेकिन ये अध्याय में रहुगुण राजा रहुगुण बहुत नम्रता से पूछले, ठीक है आपने बताया वो सही है, लेकिन मेरे में बहुत उत्सुकता है जानने की, वो कि आप मुझे फिर से बताएंगे, कुछ समझ में नहीं आया. तो ये तो बहुत बड़ा नम्रता हो गया ना. तो ये है ज्ञान प्राप्त करने का विधि, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है. हम समझते हैं अरे मैं भागवत मैंने पढ़ा है, मैं सब भागवतम क्लास भी अटेंड करता हूँ, निश्चित अटेंड करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, श्रवण भी करना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको ज्ञान मिला है. आप सिर्फ ज्ञानी हो सकते हैं लेकिन साक्षात्कार नहीं हो सकता है. तो अगर साक्षात्कार होना है तो जड़ भरत की ही पूरे इतिहास सुन सकते हैं हम, कैसे साक्षात्कार हुआ उनको। ऐसे नहीं कि वो जड़ भरत ऐसे जंगल से आ गए, तो उनकी तो बहुत बड़ी लंबी इतिहास है। लेकिन मुझे लगा कि हम इस विषय का भी तात्पर्य को जरा पढ़ लें। यह है भगवद गीता का 4वां अध्याय, बहुत बड़ा फेमस। हम लोग शुरुआत में भक्ति में आते हैं तो एक श्लोक है, देही नोस्मिन यथाधेय, ऐसे फटाक करके पाठ हो जाता है। और दूसरा है ये, हाँ कभी अरे अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो बोलेगा, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवाया उपदेश शांति से ज्ञान इनम ज्ञान इन तत्व दर्शन। अरे अरे बोलते हैं इसको यार श्लोक आता है ये श्लोक, लेकिन आज हम प्रभुपाद क्या कह रहे हैं ये श्लोक में, जरा बहुत बहुत ही अच्छा सुनने जैसा है। क्योंकि आज के इस विषय की चर्चा में बहुत ही अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे। प्रभुपाद यहाँ इस श्लोक का अनुवाद कर रहे हैं, ये चौथे अध्याय जो दिव्य ज्ञान के शीर्षक से नाम से जाना जाता है। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है वही सत्य ज्ञान दे सकता है। सो तात्पर्य है लेकिन ना प्रभुपाद के हैं, प्रभुपाद ने लिखा हुआ है तो आप खाली सुनिए। हाँ उससे बहुत कुछ हम निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होता होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। परंपरा, इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। बहुत ही महत्व है। भगवत कथन में धर्म तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म प्रत का निर्माण स्वयं भगवान से किया है, अतएव मनोधर्म का शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। सो संक्षेप में, एक प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, गुरु कौन है, गुरु की योग्यता क्या है ना, पूछते कौन है, ये है क्या, वो है क्या, इनमें क्या गुण है। कभी हम ये पूछते हैं शिष्य के गुण क्या है, हम पूछते हैं ऐसे कभी, क्या मैं योग्य हूं क्या दीक्षा लेने के लिए, मुझे दीक्षा चाहिए। कभी ये सवाल आता है कि मेरा योग्यता क्या है, योग्यता है क्या। लेकिन जब तक शिष्य योग्य नहीं है, गुरु योग्य नहीं है, ज्ञान ट्रांसफर नहीं होता। अगर गुरु योग्य भी है लेकिन शिष्य योग्य नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान मिलेगा। तो इस तरह ये जो बहुत ही एक रोमांचक अमृतोत्सव बताया गया कि ये संवाद है जड़ भरत और रहुगुना का। अभी रहु जड़ भरत के बारे में क्या कहना है, कौन है जड़ भरत? ऋषभ देव के पुत्र हैं, भगवान से अवतरित हुए हैं। पूरे इस पृथ्वी के राजा, और इतना प्रेम प्रजा से, उतनी रक्षा, सिर्फ इस तरह से वो राज्य चला रहे थे कि हर एक प्रजा का व्यक्ति है मेरी उत्तरदायी, तो इनको जन्म मृत्यु के चक्कर से, ऐसा भाव। लेकिन उसके साथ साथ एक और एक उनमें बहुत गुण था, वो है वैराग्य। जैसे ही समय आ गया जैसे उन्होंने देखा कि अपना पुत्र अभी बड़े हुए हैं, क्या किया उन्होंने, सीधा छोड़कर पीछे देखा भी नहीं उन्होंने। इस संसार के विषयों से जितने इतना आसानी से नहीं होता है, सीधा चले गए और एकांत में जंगल में तपस्या करने। ऐसे जगह पे वैष्णव है, लेकिन भगवान उनके माध्यम से हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि उनका आध्यात्मिक स्तर यहां तक पहुंच गया था कि वो भाव भक्ति और वहां गए हुए व्यक्ति हमें सिखाने के लिए, भविष्य के जो भी साधक भक्त हैं उनको सिखाने के लिए उन्होंने उनको एक माध्यम चुना और उनको ऐसे एक स्थिति पर डाला जहां पे जो उन्होंने पूरी तरह से भगवान का आश्रय लिया था, उस आश्रय से थोड़ा सा उन्होंने, थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा सा उनको लगा कि ये हिरण के लिए मेरी बहुत जरूरी है, उनको ये नहीं लगा कि इसका भी आश्रय वही है। थोड़ा सा गए, थोड़ा सा धीरे 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 बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, तो भगवान का जो उन्होंने आश्रय लिया था वो कम हो गया और आश्रय लिया यहां पे समझ कर कि मैं कर रहा हूं। और उसके बाद आप जानते हैं कि इतना मोहित हो गए उससे कि अगर वो हिरण नहीं दिख रहा है तो इतना चिंता होती थी, अरे कहीं शेर ने खा लिया, ये खा लिया, पूरा दिमाग उनका। और जब वो आ जाता है हिरण, फिर प्रकट हो जाते हैं, तो इससे जाके ऐसे गले लगते थे, मिलन करते थे, ऐसा, अरे जैसे बोलते हैं ना हम लोग, विरह भाव से फिर से संभोग हो जाना। तो एक दिन अकस्मात हिरण के उपस्थिति में उन्होंने अपना देह त्याग किया और हिरण का शरीर में। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी स्थिति कौन से स्तर पर थी, इसलिए जब हिरण के शरीर में लिखा उनको सब कुछ याद था, हिरण के शरीर में भी। और उसके बाद उन्होंने ऐसा एक शरीर धारण किया, तो उन्होंने शुरुआत में उन्होंने निर्णय किया कि अभी मुझे, तो उन्होंने मुंह से कभी कुछ बोला ही नहीं, एकदम मौन व्रत, और बाहर से एकदम बेवकूफ की तरह। अभी ऐसा व्यक्ति जो अंदर से सब कुछ जानता है, पूरा ज्ञानी है, पूरा चतुर है, सब कुछ मालूम है, साक्षात्कार हुआ है उसको, लेकिन समाज में ऐसा कर रहा है कि मैं एकदम मूर्ख हूं, इसका मतलब मिथ्या अहंकार हो ही नहीं सकता है ना, कुछ मिथ्या अहंकार ही नहीं है। तो ऐसे स्थिति में वो शुरुआत के दिन, हाँ यही नहीं, सिर्फ मौन तो था, किसी से बात तो किया नहीं, लोगों ने समझा है बेवकूफ है। जब जान पे कतरा आया, अभी तो मरने का समय है, तो जड़ भरत को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो ये तो यही व्यक्ति हो सकता है जो पूरी तरह से आत्मा से मुक्त है, पूरा साक्षात्कार हुआ है, वो कुछ और ही दिखाई दे रहा है उसको, हाँ ये क्या है, ये सब क्या है, जड़ है ये, सर काटने का समय आ गया तो सर नीचे करके उसको सब मालूम। तो ऐसा व्यक्ति जब पहली बार बोलता है तो उसमें कैसे शक्ति होगी, है ना। प्रभुपाद हमें बोलते हैं ना, प्यूरिटी इज द फोर्स। सो उनके ऐसे शब्द में इतना शक्ति थी कि उनके सामने अगर कोई, ऐसे नहीं कि सब लोग, हाँ कोई अगर सामने थोड़ा सा दिल खोल के नम्रता से अगर पूछा, अगर नम्रता क्यों, यहाँ पे तो नम्रता शुरुआत में नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने, तो ये हुआ जड़ भरत का। अभी रहुगुण भी कोई साधारण नहीं था व्यक्ति, हाँ राजा है, राजा यानी उनके पास सब कुछ संस्कार होते हैं, ज्ञान होता है, हाँ। और पालकी भी ऐसा कोई साधारण नहीं था, कोई बड़ा, हाँ चार लोग ले जाने वाला पालकी, दो लोग नहीं, हाँ। और एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, दूसरा कोई है नहीं, गाड़ी बीड़ी है नहीं, इसी में जाना पड़ता है, और वो देख रहा है अपने देश चला रहे हैं, तो इस दृष्टि से देख रहा है कि मैं राजा हूँ। और ऐसे समय एक जो पालकी, जैसे डिवोटी क्लास में बता रहे थे, जैसे कार का एक टायर पंक्चर हो जाता है तो स्पेयर टायर होता है ना, तो यहाँ पे स्पेयर टायर कहाँ है? स्पेयर टायर है ही नहीं, तो उनको ढूंढना पड़ा, तो ये मिल गया, इसको पकड़ लिया। हाँ, सट्टा कट्टा, और ये तैयार हो गया दिखने में एकदम अच्छा, एकदम इसको लगा लिया। सिर्फ प्रॉब्लम ये था, ये अट्टा खट्टा था, लेकिन क्या प्रॉब्लम था, ये वैष्णव था, है ना। भगवान की सेवा और भोग में मैच नहीं होता है ना, तो ये अभी वैष्णव था, तो वैष्णव का व्यवहार तो जिस जो एकदम आराम से बैठा है, अच्छे से बैठा है, तो उसको तो हिला ही देगा वो, तो इसने तो हिला दिया उसको। जैसे पालकी आगे जाती है तो वो देख रहा है चींटी को, तो उसमें चींटी में उसको आत्मा ही दिखाई दे रहा है, और राजा में भी आत्मा दिखाई दे रहा है, तो ये सोच रहा है कि मैं ये चींटी को मार डालूं या ये राजा जो बैठा है इसको थोड़ा हिला दूं, दोनों में से कौन सा सही रहेगा। तो उसने तो कहा राजा को हिलाना अच्छा है, तो ठक करके रुक जाता था। तो जैसे एक बार हो गया तो राजा ने, क्यों राजा है और ये तो पालकी ले जाने वाले लोग की हरकत क्या, इनकी औकात क्या, ऐसे कैसे करके उन्हें चिल्लाने लगा, तुम जानते नहीं कि मैं राजा हूं, तुम लोग को डर नहीं है मेरा, मैं दंड दे सकता हूं। जो तीन पालकी चलाने वाले थे उनके तो हाथ कांप रहे थे, लेकिन ये चौथा अपने जड़ भरत कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर से उठाया, फिर के गया, फिर से थोड़ी देर के बाद जाने के बाद फिर से ऐसा ही हुआ। तो इस बार तो राजा इतना क्रोधित हो गए, तुम जानते हो, तो उनको मालूम नहीं था कौन कर रहा है, वो तो चारों लोगों को दोष दे रहे थे, तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें यमराज से ज्यादा दंड दे सकता हूं। तो तभी वो तीन लोग थे, उन लोग बोले नहीं 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 हम ये कर रहा है, ये उसके ऊपर हाथ दिखा। तो उसको देखा तो उसको कि बाबा क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा, क्या हुआ, तुम थक गए हो क्या, तुम दिखते ऐसे ऐसे हो। हाँ, तो ये सब उन्होंने सुना, लेकिन जड़ भरत ने अभी भी कुछ बोला नहीं। कुछ समय के बाद चल रहा है, फिर तीसरी बार जब होता है तो इस बार रहुगुना ने बहुत ही कठोर शब्द यूज किया, क्या तुम जानवर हो क्या, जब बोला तुम जानवर हो तभी पहली बार जड़ भरत ने अपना मुंह खोल दिया, तुम जो बोल रहे हो वो सही है, राजा को बोला। हाँ, तो इस संदर्भ में कि जानवर भी ये जो मटेरियल इंग्रेडिएंट से ही बनता है, तो उस तरह से यहाँ मैं जानवर में मेरे में कुछ है नहीं, और तुम भी जो बैठे हो वो पालकी भी उसी का बना हुआ है, तुम जो बैठे हो वो भी उसी का बना है, जो पालकी चला रहे वो भी उसी का बना है, लेकिन राजा तुम समझ रहे हो कि तुम राजा हो, लेकिन इस जीवन में तुम राजा हो सकता है कि अगले जीवन में तुमको पालकी चलाना पड़ेगा, और मैं राजा हो सकता हूं। जब ऐसा सुना कि राजा कभी अपेक्षा ही नहीं कर रहा था कि ऐसा भी कोई बोल सकता है, तुरंत पालकी से उतर गया और सीधा साष्टांग दंडवत कर दिया। अब तुम कौन हो मुझे बताओ, कौन हो तुम, कहां से आया, इतना बहुत पश्चाताप हुआ। तभी जड़ भरत कुछ ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान देने के बाद इसको हो जाता है कि यही मेरे सही, लेकिन उनकी नम्रता इतनी थी कि वो पूछने लगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, आप योग बता रहे हैं ये तो बहुत मेरे लिए मुश्किल है, जिस तरह से अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था भगवद गीता, उसी तरह का एक तरह संवाद है यहाँ पे, वो बता रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब तक उस स्तर पर नहीं आते हैं नम्रता से, तो कभी ज्ञान ट्रांसफर नहीं है। तो वो सब कहने के बाद आज के इस अध्याय में ये जो पांचवा छठा श्लोक में वो फिर से जवाब दे रहे हैं, लेकिन यही पूछ रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत ही नम्रता से, मैं मूर्ख हूँ। इस बार किसने स्वीकार किया मूर्ख है, राजा बोल रहा है दिल से कि मैं मूर्ख हूँ, मेरे में बीमारी है, बीमारी के वजह से मुझे समझ में नहीं आया ये सब, आप मेरे बीमारी को ठीक कीजिए, मैं आपका पूरा आश्रय लेता हूँ, आप बताइए मुझे क्या है। तभी वो ये बताते हैं कि हे, तो आपने सब सुना उसके बारे में, लेकिन इसका जो लास्ट भाग जो है वो कहते हैं, ये राजा सबका कारण एक ही है और वो है, वो श्लोक में यहाँ पे लिखा नहीं है, जो उसका दूसरा जो श्लोक है ना उसमें वो वर्ड आता है धूर्मदांधा। ये संस्कृत वर्ड है, धूर्मदांध का अर्थ है दुर्मद अंध, दुर्मद हो और तुम, बहुत कठोर शब्द है राजा के लिए, तुम दुर्मद हो और तुम अंधा भी हो। अहंकार के वशीभूत मद से अंधे, ऐसा यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रभुपाद ने किया है कि ये बता रहे हैं जड़ भरत कि सबका कारण ये है। सब ये तो कोई नई बात नहीं, हम सब सुन रहे हैं कि मिथ्या अहंकार मिथ्या अहंकार मिथ्या अहंकार, लेकिन मिथ्या अहंकार इतना प्रबल है, इतना जड़ है वो, कि उससे बाहर आना, भगवान के ऐसे गुरु की कोई कृपा हो तभी वो कट सकता है। तो इसलिए हमने अपने इतिहास में देखे हैं कि कैसे लोगों ने अप्रोच किया है गुरु को। उसमें से हमारे चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी कहते हैं, इतने बड़े धनवान अमीर विद्वान और ज्ञान भी जानते, लोग उनकी इतनी इज्जत करते हैं, संत बोलते हैं उन्हें, तो महान हो, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के सामने आए तो पूरी तरह से दांत के बीच में घास को रखकर कहने लगे, आप मुझे बताइए क्या है, मैं कौन हूँ। तो ऐसे अनेक ऐसे उदाहरण आते हैं कि कैसे गुरु और शिष्य का संबंध में कैसा ये ज्ञान, हाँ, आत्मा साक्षात्कार के रूप में अगर बदलना है तो किस तरह से अप्रोच करते हैं। हाँ, और चैतन्य चरितामृत में प्रताप रुद्र के बारे में, हाँ, इतना बड़ा राजा, हाँ, और कैसे उनके, हाँ, जब बोला गया कि तुम राजा हो इसलिए तुम्हें नहीं मिलेगी वो, तो उन्होंने कहा अगर इसी इसके कारण अगर नहीं मिल रहे हैं तो ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ, मैं भिखारी बनूंगा, अगर मैं भिखारी बनने से मुझे स्वीकार करते हैं तो मैं तैयार हूँ। अभी बोलने के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन भिखारी बनना यानी अपना कुछ नहीं है पूरी तरह से। हम देखते हैं ना कभी कभी, हाँ, कोई लोग भीख मांगते हैं तो उनका भाव कैसे होता है ना, तो पूरी तरह से बोलते हैं यार कुछ तो दे दो, यार कुछ तो दे दो। तो ये भाव, जब ये भाव नहीं आता है, नहीं तो मिथ्या अहंकार हमें, मुझे भी नहीं, मैं जानता हूँ, समझ गया हूँ, मालूम है, लेकिन कुछ ये ऐसे, जब मिथ्या अहंकार नहीं है इसका मतलब वो पूरी तरह से। तो उसी तरह से हमारे, हाँ, ये जरूरी नहीं है कि अच्छा कोई शिक्षा दे रहा है कि वो स्वीकार करना चाहिए। वैसे कंस को भी वसुदेव ने यही ऐसा ही संदर्भ था, हाँ, कंस अपने बहन से इतना प्रेम, और जैसे ही आकाशवाणी हुई वही प्रेम पूरा नफरत में बदल गई। और जब वासुदेव तो इमरजेंसी था, कैसे भी बहन देवकी को बचाना था, लेकिन उसके बाद में उसने कितना तो यही श्लोक दिया है सब कि तुम शरीर नहीं है आत्मा है, ऐसे होगा वैसे। कंस को बोलते हैं ना, हाँ, अग्नि है लेकिन जलाने के, लेकिन अगर जो चीज जलाना है वो बहुत गीला है तो कैसे जलेगा। उसी तरह दुर्योधन का भी ऐसे ही हुआ, हाँ, विदुर ने सब बताया लेकिन दुर्योधन को कोई, क्योंकि द्वेष और क्रोध और ईर्ष्या इतना तीव्रता में था उसमें, तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इसलिए ये एक कॉम्बिनेशन जो है ज्ञान रिसीव करना, और ये इसके भी बहुत सारे लक्षण होते हैं। वैसे ही हमारे परम गुरु के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, तुम बड़े विद्वान हो लेकिन तुम्हारा जीवन कोई अर्थ ही नहीं है। और वो गौर किशोर दास बाबा जी, उनके पास कुछ ज्ञान, जब तक उनसे दीक्षा नहीं लोगे तुम्हारा, तो वो अपना आत्महत्या करने के लिए तैयार थे, तभी उनको गुरु का आश्रय मिला। तो उसी तरह से हमारे परंपरा में हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद पहली बार जब अपने गुरु से मिले, हाँ उन्होंने भी थोड़ा सा चैलेंजिंग डाला था, ब्रिटिश राज चल रहा था, हाँ उन्होंने कहा कि पाश्चात्य देश में तो ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो प्रभुपाद भक्तिदान सरस्वती ने काट दिया, सरकार तो बदलती रहेगी लेकिन ये ज्ञान देने के लिए कोई सरकार पे निर्धारित नहीं है, कौन सा गवर्नमेंट है तभी होगा। प्रॉब्लम ऐसा कभी नहीं होगा कि संसार में कि अनुकूल परिस्थिति रहेगी, ऐसा कभी होगा ही नहीं, प्रतिकूल ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रचार कार्य रुक जाएगा। तो तभी प्रभुपाद ने स्वीकार किया कि बस, हाँ समय बहुत लगा लेकिन तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो ये एक गुरु शिष्य के कैसे लक्षण होते हैं, ये आज के इस संदर्भ से हम समझ सकते हैं। तो ये है अपने मिथ्या अहंकार के बारे में बार बार उल्लेख किया है। तो एक उदाहरण दिया जाता है कि तो कैसे हम समझे कि अगर मिथ्या अहंकार तो है, क्योंकि यह शरीर से इतना तीव्र आसक्ति है, तो उस आसक्ति में हम जो भी कार्य करते हैं तो अगर सही नहीं करते हैं तो फिर उसका सही परिणाम नहीं होता। तो उसके लिए उदाहरण, एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि दिया, अभी विक को क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, विक, हाँ बत्ती और दिया, बत्ती में तेल है और दिया जल रहा है, अगर ये सही तरह से जल रहा है तो रोशनी देगा, लेकिन अगर ये सही तरह से जल नहीं रहा है तो क्या देगा, सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, धुआं, और धुआं के साथ वो लैम्प का भारी भाग क्या हो जाएगा, सूट, नहीं इंग्लिश में सूट बोलते हैं उसको, पूरा कवर हो जाए। अग्नि है अंदर लेकिन बाहर से सिर्फ, क्यों, क्योंकि सही तरह से, तो हम पूछेंगे अरे तो फिर क्या है सही तरह से का मतलब क्या है, मैं तो जानता हूं कि माला जाप करना चाहिए, वैष्णव का सेवा करना चाहिए, नम्र होना चाहिए ये सब सुना है, लेकिन ये सुनने के बाद भी हमारे कार्य में अगर सही तरह से हम नहीं कर रहे लेकिन हमें लग रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ, अभी कौन बताएगा हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि किस हद तक साक्षात्कार का अनुभव हुआ है। नहीं हुआ है इसका मतलब हम सही नहीं कर रहे हैं। अग्नि है, बत्ती भी है लेकिन बराबर से नहीं जल रहा है, इसलिए इसके लिए ये मिथ्या अहंकार कैसे प्रभावित करता है, मन के द्वारा। हाँ मन के बारे में हमने पिछले क्लास में भी वही एक ऐसा उदाहरण दिया कि मन ऐसा है वैसा है, हाँ एक पिछले इसमें था कि वो ऐसे स्त्री के साथ किया है कि जो सती, अभी सतीत्व नहीं है, ऐसे अनफेथफुल, इस पर विश्वास नहीं करना, तो वही मन जो बहुत स्ट्रांग होता है, इसका इस बार ऐसा तुलना किया है कि वो हाथी की तरह, एक हाथी है जो क्या कर सकता है, सब नष्ट कर सकता है, और एक हाथी है जो मायापुर और गुरुवायुर में है, उसको बहुत ही नियंत्रण में रखा है, वो भगवान की सेवा कर रहा है। तो जब तक मन हमारा मित्र नहीं होता तो मन के बहुत सारे लोग हैं, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं, जब वो मित्र नहीं है तो उनको सबको बुला लेता है, वो जानते हैं कौन है वो सब फ्रेंड्स लोग, वो है हमारे षडवैर, सब आ जाते हैं, काम क्रोध मत्सर ईर्षा ये अहंकार सब आ गए हैं। तो जब वो आ जाते हैं, अगर वो मित्र नहीं है हमारा, शत्रु है, तो फिर उनकी सेवा करना पड़ता है। बहुत वैसे सिद्धांत साधारण है ना, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो उनकी सेवा करना पड़ता है। तो उनकी सेवा करने का परिणाम क्या होगा, पतन हो जाएगा। अगर वही मन वही शक्ति अगर सही तरह से एंगेज रहे तो ऊपर ले जाएगा, वही मन है, मन है वही, लेकिन उसका इस तरह उपयोग हो रहा है तो वो ले जाएगा नीचे। ऐसे उदाहरण दिया गया है तो हम बहुत ही भाग्यवान है हम सब लोग। क्यों भाग्यवान है एक तरह से? क्योंकि प्रभुपाद उसी तरह के साक्षात्कार जो जड़ भरत के हृदय में था वही साक्षात्कार प्रभुपाद में था, और प्रभुपाद इस संसार में ऐसे चल रहे थे, लेकिन मुंह बंद किया था उन्होंने? नहीं, कभी मुंह बंद नहीं किया था उन्होंने, हमेशा उन्होंने, कितने उन्होंने किताब ग्रंथ सब लिखे हैं, कितने आवाज है। तो अगर किसी को लगता है अरे जड़ भरत जैसा तो मैंने किसी के सामने आया नहीं है, प्रभुपाद और जड़ भरत का ये जो संवाद में कोई अंतर नहीं है, उनके किताब में जो बोलते हैं वो पूरी तरह से क्लियर कट शुद्ध हृदय से बाहर आ रहा है, उसे श्रद्धा से हम स्वीकार करते हैं तो वही हमारे आत्मा को भी शुद्ध कर देता है। तो इस तरह के ज्ञान से हम अपनी माया का जो प्रभाव है उसको हम कैसे मिटा सकते हैं? हाँ, माया का शक्ति ऐसा नहीं है कि अरे माया में अभी समझ गया माया क्या है। एक भक्त ने प्रभुपाद से आके पूछा, प्रभुपाद कभी कभी मैं माया में पड़ जाता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा, कभी कभी? हाँ, तुम हमेशा माया में रहते हो, कभी कभी भक्तों के संग में थोड़ा सा जाग जाते हो। तो प्रभुपाद इतने शिष्यों को से बहुत उनको एक चिंता होती थी, कभी प्रभुपाद कहते थे मेरी यही चिंता है कि मेरे शिष्यों को माया से ज्यादा डर नहीं है, ऐसे वो बता दें मुझे। फिर एक बार प्रभुपाद विग्रह के सामने बहुत प्रार्थना कर रहे, उनके आंखों से आंसू आ रहे, तो किसी शिष्य ने देखा, प्रभुपाद आप प्रार्थना कर रहे हैं आपके आंसुओं से आंसू, आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? तो उन्होंने शिष्य की तरफ देखकर बोला, मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान मुझे माया से बचाइए। तो हम जानते हैं कि प्रभुपाद ने अपने जीवन चरित्र में किस तरह का जीवन, हाँ उन्होंने तो माया से मुक्त कर दिया है, लेकिन सिखा रहे थे कि माया तो ऐसा है। तो इस संबंधित हम बस, तो ये है प्रभुपाद की शिक्षा हम सब के लिए, उन्होंने छोड़ के गए हैं। तो जो कुछ हुआ है, कौन से युग में कभी हुआ है, कथा भागवतम में है, लेकिन वही भागवत कथा प्रभुपाद स्वरूप अपने वापू स्थिति में थो, लेकिन अभी तो वापू स्थिति में नहीं है, लेकिन वाणी के रूप में वही भागवतम का संदर्भ जो चल रहा है, जो रहुगुण और जड़ भरत का जो हो रहा है, हमें लगा रही मैं तो वहां नहीं हूं, लेकिन अगर प्रभुपाद के भागवत कथा को हम सुनते हैं और स्पेशली ये कथा को सुनते हैं, समझ लीजिए कि हम वहां पे उपस्थित है और सुन रहे हैं। जड़ भरत जैसे बोल रहा है उसी तरह से, हाँ जड़ भरत कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, उसने पूरा सब जानता था कि राजा कैसे सोचता है, एक पशु हिरण कैसे सोचता, और ये भी सोचा कि उसके भाई लोग कैसे सोचते थे। सब कुछ जानने के बाद इस संसार के पूरी मुक्त अवस्था में आकर मुंह खोल देता है और बोलने लगता है, तो उस वाणी का क्या शक्ति होगा? ऐसे नहीं सोचना है कि अरे लेकिन मुझे ऐसा शक्ति का प्रभाव होगा क्या, वो है श्रील प्रभुपाद, उनके ग्रंथ और उनके अनुयायी। इस तरह से आंदोलन बढ़ रहा है तो इस संसार में ये ज्ञान अगले और 10,000 साल तक इस तरह उपलब्ध होगा, और हर एक के लिए मौका होगा अपने जीवन को सार्थक करें और इस माया के जो बहुत ही कठोर, जो एकदम स्ट्रांग माया का जो एक ग्रिप होता है, सिर्फ उनके वाणी से उसको हम डीला कर सकते हैं, इतना पावर है। तो इसलिए साधु को महाराज बताया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने इंद्रियों को, मन को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा है, मन उनका मित्र है। तो ऐसे साधु के संग में आना ये बहुत बड़ा बड़ा भाग्य है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। तो ये श्रील प्रभुपाद का भागवतम सबके लिए में उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா.